अध्याय 6 पुरुषार्थ एवं पंच महायज्ञ। भारतीय जीवन दर्शन दो विचारधाराओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। इहलोक परलोक दोनों को ही सामने रखकर उसने विभिन्न संस्थाओं को जन्म दिया है। पहली विचारधारा संसार की समस्त वस्तुओं को असत्य और क्षण भंगुर मानने के कारण उनके पीछे भागना वर्जित करती है तथा परलोक की चिंता और परम सत्य की खोज पर बल देती है। दूसरी विचारधारा पश्चिमी सभ्यता की देन है। वह सांसारिक सुखों के मामलों में मिलने वाली सफलता को ही वास्तविक मानती है। यह परलोक के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है तथा उसे अस्पष्ट, अज्ञात और अवास्तविक मानती है। वर्तमान जीवन ही उसके लिए वास्तविक सत्य है। भारतीय जीवन दर्शन इन दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए ज्ञान में से किसी की भी अवहेलना करने की अनुमति नहीं देता है। वह सांसारिक सुख और उसे प्रदान करने वाली वस्तुओं को नाशवान तो मानता है, परंतु साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि नाशवान होने के कारण उसका अस्तित्व स्वीकार न करना अनुचित है। सांसारिक सुख क्षण भंगुर है तथा वह उच्चादर्शों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, फिर भी उसे प्रदान करने वाली वस्तुओं का परम सत्य सत्ता से अविच्छिन्न संबंध है। यह पारलौकिक लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति को आवश्यक मानती है। उसने इन्हें तीन मुख्य भागों में बांटा है, धर्म, अर्थ और काम, परंतु वह इन्हीं की पूर्ति तक मानव जीवन को सीमित नहीं मानता है। इसके अनुसार अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। सांसारिक और पारलौकिक उद्देश्यों के संज्ञा से अभिभूत किया गया है। पुरुषार्थ का अर्थ एवं परिभाषा। शाब्दिक दृष्टि से पुरुषार्थ का अर्थ उद्योग अर्थात व्यक्ति की कर्मशीलता है। संधि विच्छेद के आधार पर इसका अर्थ हुआ पुरुष अर्थात मानव का उद्देश्य है, पुरुष धन अर्थ। इसके अनुसार मानव जीवन के कुछ उद्देश्य हैं जिनकी उसे पूर्ति करनी चाहिए। संस्कृत में पुरुषार्थ ते पुरुषार्थ कहा गया है, अर्थात पुरुष की इष्ट वस्तु ही पुरुषार्थ है। हिंदू जीवन दर्शन मानव जीवन के चार उद्देश्य स्वीकार करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से प्रथम तीन सांसारिक तथा मोक्ष पारलौकिक सुख से संबंधित है। मानव जीवन का अंतिम और मुख्य लक्ष्य मोक्ष है, परंतु सांसारिक उद्देश्यों धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक तरफ ये उद्देश्य और दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्ति के साधन है। ये मोक्ष प्राप्ति के तभी कारगर साधन सिद्ध हो सकते हैं जब इनका उचित ढंग से प्रयोग हो। इनकी पूर्ति की अनिवार्यता के कारण इनसे कर्तव्य का बोध होता है। यों तो सभी कर्तव्य पुरुषार्थ की श्रेणिया में आ सकते हैं, परंतु आधारभूत चार ही हैं। अतः उपनिषद, गीता और स्मृतियों में इन चार को ही पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा है। इन चारों को ही मानव जीवन का उद्देश्य इसलिए बताया गया है कि ये ही मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं, इच्छाओं और मूल्यों की पूर्ति करते हैं। धर्म, नैतिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों, अर्थ, आर्थिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों तथा काम, मनोशारीरिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों की पूर्ति करता है। पुरुषार्थ के प्रकार। पुरुषार्थ चार प्रकार के हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें प्रथम तीन इहलोक और अंतिम मोक्ष परलोक से संबंधित है। प्रथम तीन के उचित और धर्म संगत ढंग से पालन से ही अंतिम की पूर्ति हो सकती है। नंबर एक, धर्म। धर्म सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत पुरुषार्थ है। इसकी पूर्ति के बिना किसी को समुचित ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता है। यह मनुष्य के संपूर्ण नैतिक जीवन से संबंध है तथा उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को व्यवस्थित, नियमित एवं संयोजित कर समाज में संघर्ष की स्थिति रोकता है और नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का वातावरण तैयार करता है। यह मानव आदर्शों एवं मूल्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह मनुष्य की पार्श्विक और दैवीय प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इससे इहलोक और परलोक दोनों में व्यक्ति का कल्याण और अभ्युदय होता है। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार धर्म मात्र अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास से ही संबंध नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। पी काणे के अनुसार धर्म से तात्पर्य कोई ईश्वरीय मत नहीं बल्कि जीवन का तरीका या आचरण की संहिता है। जो स्वयं व्यक्ति के रूप में तथा समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति के कार्यों एवं क्रियाओं को नियमित तथा नियंत्रित करती है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति का क्रमबद्ध विकास करना है तथा उसे इस योग्य बनाना है कि मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। पुरुषार्थ धर्म के विषय में प्राचीन मनुष्यों का कथन भी द्रष्टव्य है। बृहस्पति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुरुषार्थी में धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म शब्द की उत्पत्ति धी धातु से हुई है जिसका अर्थ है धारण करना। श्री कृष्ण ने महाभारत में धर्म शब्द की व्याख्या विभिन्न स्थानों पर किया है। प्रत्येक स्थल पर उन्होंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि धर्म से अभिप्राय है सामाजिक स्थिति को दृढ़ बनाए रखना। एक स्थल पर उन्होंने कहा है कि धर्म का उद्भव इसलिए हुआ कि सृष्टि का कल्याण हो सके। पुनः उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी कार्य मानव के कष्टों के निवारणार्थ किए जा वह सभी धर्म है। इस प्रकार जन कल्याणकारी साधन ही धर्म की परिधि ज्ञात होता है। इसका स्पष्टीकरण वैशेषिक सूत्र में कणाद द्वारा बताए गए धर्म के लक्षण से होता है जिससे सांसारिक समृद्धि अभ्युदय और आध्यात्मिक समृद्धि निरशेष प्राप्त हो वह धर्म है। पर हम यह भी देखते हैं कि भौतिक एवं आध्यात्मिक स्मृतियाँ समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं, अतः धर्म का स्वरूप अस्थायी नहीं माना जा सकता है। वह भी स्थान समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, जैसा कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि धर्म वही है जो देश काल और परिस्थिति के अनुकूल हो, पर वास्तविक कल्याण तो वही है जो सदा कल्याणकारी बना रहे। इसलिए महाभारत में कहा गया है, लोक यात्रार्थमेव धर्मस्य नियता कृतः उभयत्र मुखोदकम् इह चैव परत्र च। वही एक स्थल पर पुनः यह भी कहा गया है कि धर्म वही है जिससे स्वतः सुख हो परंतु दूसरे को उससे कभी भी कष्ट ना हो। यदन्येव विहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पुरुषः न तत्पुरुषे कुर्वीत जनाम प्रियमात्मनः। इससे ज्ञात होता है कि जो क्रिया स्वरूप की रक्षा करती हुई उन्नति की ओर अग्रसरित करे वही वास्तव में धर्म की परिधि में आ सकती है। इसका कारण यह है कि आदर्श का विनाश सबके लिए अश्रेयकर है। इसकी आहुति देकर कोई भी अर्थ एवं काम की ओर आसक्त नहीं रह सकता, अतः कामी एवं अर्थ लोलुप व्यक्ति भी अपनी मर्यादा का ध्यान अवश्य रखेगा, यही कसौटी की परख है। अतः अर्थ और काम उचित स्वरूप भी धर्म के आधार हैं, पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए धर्म ही पहला पुरुषार्थ कहा गया है। यही कारण है कि धर्म की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि वे अर्थ और काम जो धर्म के विरुद्ध हों उनको त्याग देना चाहिए। यह सभी आश्रमों में अपनी प्रधानता बनाए रखता है। ब्रह्मचर्य में यह एकमात्र पुरुषार्थ होता है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम की साधना की जाती है, पर उसका निर्देशक तत्व ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त धर्म तत्व ही होता है। वानप्रस्थ में धर्म और मोक्ष की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य बनता है। संन्यास आश्रम में एकमात्र मोक्ष की ही प्रधानता रहती है, पर वहाँ मोक्ष धर्म में प्रतिभासित होने लगता है। कौटिल्य ने तो स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रधानम पुरुषार्थात्। यहाँ यह भी संकेत करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि धर्म के मूलतः दो रूप माने गए हैं, स्रोत एवं स्मार्ट। श्रुति पर आधारित धर्म स्रोत तथा स्मृतियों पर आधारित स्मार्ट बताए गए हैं। मिताक्षरा ने याज्ञवल पर टीका करते हुए कहा है कि स्मार्ट छह प्रकार के हैं, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म। इसके अतिरिक्त युग धर्म तथा आपद धर्म भी इसी कोटि में आते हैं। नंबर दो, अर्थ। हिंदू जीवन दर्शन के अंतर्गत अर्थ को प्रसाद का दूसरा चरण स्वीकार किया गया है। यह दर्शन मानव जीवन के संपूर्ण का दर्शन है, इसने किसी पक्ष की उपेक्षा नहीं की है। हिंदू धर्म शास्त्रों ने जिन्होंने हिंदू जीवन दर्शन का निर्धारण किया है, मानव जीवन को केवल धर्म अर्थात नैतिक कर्तव्यों का पालन तक ही सीमित नहीं किया है, बल्कि उसके द्वारा धर्मानुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी बल दिया है। इसने धर्म के बाद अर्थ को ही महत्व प्रदान किया है, क्योंकि बिना उसके धर्म का पालन तथा मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। पीएन प्रभु ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है, अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। वीजी घोखले ऋग्वेद के आधार पर लाभ धन और सुविधा आदि का अर्थ के अंतर्गत लिया है। जिम्बर के अनुसार इसके कोष्टक में अर्थ अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं की संपूर्ण श्रृंखला का समावेश है जिन पर अधिकार किया जा सकता है, जिनका आनंद लिया जा सकता है और जो खोई जा सकती है, और दैनिक जीवन में घर के प्रबंध, भरण पोषण, परिवार की समृद्धि तथा धार्मिक कर्तव्यों के पालन अर्थात जीवन के विभिन्न उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में जिनकी आवश्यकता होती है। डॉक्टर लल्लन जी गोपाल के अनुसार अर्थ शब्द धन संपत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है, यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों का द्योतक है। यह मनुष्य की शक्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार मानव में भौतिक वस्तुओं के प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, उसका पूरा होना ही अर्थ है। सभी परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषार्थ के रूप में प्रयुक्त अर्थ शब्द का व्यापक अर्थ है। इसके अंतर्गत केवल भौतिक साधन ही नहीं बल्कि भौतिक सुख और आवश्यकताएं भी शामिल हैं। अर्थ का महत्व। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार इहलोक और परलोक में सुख तथा अंततोगत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों में समन्वय आवश्यक है। इसके लिए धर्मानुसार अर्थ प्राप्ति के लक्ष्य पर बल दिया गया है। नंबर एक, धर्म के पूर्ण रूप से पालन के लिए अर्थ आवश्यक है। महाभारत में लिखा है कि धर्म को पूरे रूप में पालन काफी हद तक अर्थ पर निर्भर करता है। अर्थाभाव अभिशाप है। पंच महायज्ञों ब्रह्मा यज्ञ, तृतीय यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ तथा नी यज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ को संपन्न करने के लिए इसका होना आवश्यक है। नंबर तीन, दान करने तथा अपनी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए यह आवश्यक है। नंबर चार, समाज के उत्थान तथा स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन की दृष्टि से भी इसका महत्व स्वीकार किया गया है। नंबर पाँच, इस पुरुषार्थ को पूरा किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महाभारत और स्मृतियों के अनुसार अर्थ का पुरुषार्थ पूरा किए बिना वानप्रस्थ और संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को यह मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। कौटिल्य का तो यहाँ तक कहना है कि यदि कोई व्यक्ति परिवार और समाज की आवश्यकताएं पूरी किए बिना वैराग्य ले लेता है तो उसे राज्य की तरफ से दंड दिया जाना चाहिए। अर्थोपार्जन तथा उस व्यय संबंधी नियम। हिंदू शास्त्र धर्म शास्त्रों ने अर्थ का महत्व स्वीकार करते हुए उसके उपार्जन और व्यय की विधि के संबंध में अनेक नियम बनाए हैं। नंबर एक, अर्थोपार्जन के लिए व्यक्ति को ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो अथवा कम से कम हो, उसे धर्मानुसार अजन और खर्च करना चाहिए। नंबर दू, निंदनीय कर्मों द्वारा अर्थोपार्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनोपार्जन और व्यय के तरीके के आधार पर ही उसका इहलोक और परलोक का जीवन निर्धारित होता है। नंबर तीन, धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति को अपने को धन का स्वामी नहीं बल्कि उसका संरक्षक समझना चाहिए। उसे केवल अपनी न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करना चाहिए। बचे हुए धन को समाज के हित के लिए खर्च करना चाहिए। वेदों में लिखा है कि हे मनुष्यों, तुम 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से व्यय करो। नंबर चार, इसके प्रति व्यक्ति को आसक्त नहीं होना चाहिए। नंबर पाँच, पंच महायज्ञों पर व्यय करना चाहिए और इससे न केवल पितरों और प्रेत आत्माओं को शांति मिलेगी बल्कि समाज कल्याण भी होगा। नंबर छह, अर्थोपार्जन गृहस्थ आश्रम में ही किया जाना चाहिए। नंबर तीन, काम। पुरुषार्थों में तीसरा स्थान काम को दिया गया है। यद्यपि हिंदू जीवन दर्शन ने मानवीय जीवन में इसका महत्व स्वीकार किया है, तथापि सर्व प्रमुख और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के साधनों में इसे निम्नतम स्थान प्रदान किया गया है, फिर भी यह एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसकी उपेक्षा की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं की हैं, उनमें से कुछ ने इसे संकुचित और कुछ ने व्यापक अर्थ में लिया है। संकुचित अर्थ में इसे इंद्रिय सुख और यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति तक ही सीमित किया गया है। व्यापक अर्थ में सभी प्रवृत्तियों, इच्छाओं और कामनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अनुसार शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय सुख से संबंधित जो कामनाएं और इच्छाएं हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आती हैं, क्योंकि वे प्रेरक और उद्दीपक होती हैं तथा मनुष्य को भोग के लिए प्रेरित करती हैं। डॉक्टर लल्लन जी गोपाल के अनुसार काम इंद्रियों के बाह्य विषयों के संपर्क जनित सुख को कहते हैं। कभी कभी काम शब्द पांचों ज्ञानेन्द्रियों की दृष्टि की इच्छा तथा मन और हृदय की कामनाओं के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन साधारणतः इसका प्रयोग संकुचित इंद्रिय सुख के अर्थ में ही किया जाता है। कार्वे का मत है कि काम का अर्थ है इच्छा, आकांक्षा, अर्थात एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है या चाहने की जो अभिलाषा उसके अंतर है, वही काम है। डॉक्टर कबाड़िया के अनुसार काम मानव का सहज स्वभाव और भावुक जीवन व्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और संदर्भ प्रियता की वृत्ति की ओर निर्दिष्ट करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह मौलिक और स्वाभाविक है तथा इसका समन वर्जित है। इंद्रिय सुख और यौन तृप्ति की ही नहीं बल्कि संतानोत्पत्ति भी इसका लक्ष्य है, क्योंकि यह एक धार्मिक कर्तव्य है। इसकी पूर्ति अनियंत्रित नहीं बल्कि धर्म द्वारा नियमित होना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों ने इसे धर्म अथवा अध्यात्म से जोड़कर इसे नियमबद्ध किया है। उन्होंने चार्वाक के सुखवादी दर्शन को इसका आधार नहीं माना है। जबकि सामाजिक और धार्मिक दृष्टियों से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे पुरुषार्थ की श्रेणी में रखना उचित है। जैविक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट है कि इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर व्यक्ति में धीरे धीरे तनाव, निराशा और क्रोध और अधिक बढ़ता है। इस प्रकार का व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। सामाजिक दृष्टि से प्रजनन तथा उसके द्वारा समाज की निरंतरता बन आवश्यक है। स्त्री पुरुष के बीच संसर्ग से ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। काम प्रेम तथा सौंदर्य भावों का विकास भी करता है। सामाजिक दृष्टि से इन भावों का विकास आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इसकी पूर्ति आवश्यक है। काम का महत्व, इसके अनेक महत्व है। नंबर एक, काम से सर्वप्रथम यौन संबंधी इच्छा की पूर्ति तथा सुख प्राप्त होता है। इसकी पूर्ति न होने पर मानसिक तनाव पैदा होगा, जिससे क्रोध और निराशा उत्पन्न होती है। यौन तृप्ति एक सहज और मौलिक प्रवृत्ति है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक में यह होती है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा अराजकता की स्थिति ना उत्पन्न होने देने के लिए काम पूर्ति को विवाह जैसी संस्था और धार्मिक नियमों से आबद्ध किया गया है। नंबर दो, मानव जाति में संतानोत्पत्ति की इच्छा भी सहज है। काम से इसकी पूर्ति होती है। यह वंश और समाज की निरंतरता बनाए रखता है तथा संस्कृति और समाज की रक्षा करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार काम पूर्ति के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। इससे इंद्रियां तुष्ट होती हैं, जिससे अंत में चलकर विरक्ति की भावना उत्पन्न होना संभव है। विरक्ति की भावना पैदा होने के बाद मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर चार, मोक्ष। हिंदू धर्म शास्त्रों ने धर्म और काम का महत्व स्वीकार करते हुए इनकी उपेक्षा करने की अनुमति नहीं प्रदान की है, परंतु उन्होंने इन्हें मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं माना है। उनके अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। यह अंतिम परंतु सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, क्योंकि हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य का अंतिम और वास्तविक लक्ष्य इसकी प्राप्ति है। इसी के लिए अन्य पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है। अन्य पुरुषार्थ अस्थाई और वास्तविक आनंद नहीं प्रदान करते। इसकी प्राप्ति तो मोक्ष के बाद ही होती है। मोटे रूप में आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाना ही मोक्ष है, परंतु सांख्य दर्शन, गीता, वेदांत दर्शन तथा विभिन्न विचारकों में मोक्ष की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की गई है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की माया के प्रभाव से मुक्ति तथा कैवल्यता व बंधनों से छुटकारे की स्थिति प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। इसके अनुसार पुरुष कार्य का करता है, उसके द्वारा जो होता है वह प्रकृति का ही खेल है। मन और बुद्धि भी उसी के अधिकार हैं, अर्थात उसके माया जाल से वे भी प्रभावित होते हैं। उसके कार्यों के फल स्वरूप ही पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। वह तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है तो वह प्रकृति की माया जाल से अप्रभावित हो जाता है तथा अपने को उससे भिन्न समझने लगता है। ऐसी स्थिति में वह प्रकृति लज्जित होकर माया जाल का फैलाना बंद कर देती है और पुरुष उसके पासों से मुक्त होकर कैवल्यता, अकेलापन अथवा बंधनों से पूर्ण मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह उसकी नैसर्गिक अथवा स्वाभाविक स्थिति है, वही मोक्ष है। गीता के अनुसार मानसिक द्वंद्व अर्थात सुख दुख की भावना का समाप्त होना तथा यह जान लेना कि सभी स्थानों पर एक ही परमेश्वर है मोक्ष की अवस्था है। सुख दुख को समान और सभी को ईश्वर में समझने वाला तथा राग द्वेष और काम क्रोध से रहित आत्म संयमी और आत्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मा निर्वाण की अवस्था प्राप्त करता है। यह अवस्था ही मोक्ष है। दैत्ववादियों के अनुसार अज्ञान का आवरण हट जाना तथा शीघ्र ही ब्रह्मानंद का अनुभव कर मोक्ष की स्थिति है। आत्मा मूल रूप में पर ब्रह्मा स्वरूप है और वह जब अपना मूल स्वरूप अर्थात पर ब्रह्मा को पहचान लेती है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैन दर्शन के अनुसार सांसारिक बंधनों से आत्मा की मुक्ति मोक्ष है। जो सम्यक ज्ञान कोष्टक में सच्ची ज्ञान, सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, सम्यक चरित्र, सच्चे आचरण से ही प्राप्त हो सकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इसकी प्राप्ति के मार्ग हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार तीसरा का निवारण ही मोक्ष का आधार है। सम्यक दृष्टि, सत्य का ज्ञान, सम्यक संकल्प, सत्य भाग नंबर, सम्यक वाक, सत्य वचन, सम्यक कर्मांत, सत्य आचरण, सम्यक विचार, सम्यक व्यायाम, असत्य विचारों से दूर रहना, सम्यक आजीव, सत्य रोजी, सम्यक स्मृति, अपने को सुधारने वाली बातें याद रखना तथा सम्यक समाधि, हृदय में शांति, आनंद तथा निर्वाण को प्राप्ति इसके लिए मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। मोक्ष प्राप्ति के निम्नलिखित मार्ग बताए गए हैं। नंबर एक, ज्ञान मार्ग। मोक्ष प्राप्ति का यह सबसे उत्तम मार्ग माना गया है। ज्ञान मार्गी ईश्वर को अव्यक्त और निराकार मानते हैं। उनके अनुसार अपने मन में पर ब्रह्मा का स्वरूप निर्धारित कर सभी प्राणियों में समता का भाव रखते हुए उसे मन को स्थिर कर लेना अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्त करना है। नंबर दो, भक्ति मार्ग। यह ज्ञान और कर्म दोनों ही मार्गों से सहज और सुगम है। यह आराधना का मार्ग है। आराध्य ईश्वर का एक आकार प्रकार निश्चित कर आराधना कर उसकी प्राप्ति की जाती है। भगवान की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। सामान्य जन के लिए ज्ञान मार्ग कठिन है क्योंकि अव्यक्त और निराकार ईश्वर को मन में स्थिर करना सहज कार्य नहीं है। सगुण रूप की आराधना करते हुए ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण सहज कार्य है। नंबर तीन, कर्मयोग। यदि उपयुक्त दोनों मार्गों में से कोई भी ना अपनाया जा सके तो गीता में कर्मयोग द्वारा मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया गया है। अनासक्त भाव से वर्ण आश्रम धर्म तथा सार्वभौमिक धर्मों कर्तव्यों का पालन ही कर्मयोग है। सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना तथा फल की इच्छा न रखना ही निष्काम अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का महत्व। सांसारिक बंधनों से मुक्त तथा चिरंतन आनंद की अवस्था की प्राप्ति ही मोक्ष की स्थिति है। इसमें मैं और मेरा का भाव नष्ट हो जाता है। तब व्यक्ति सुख दुख से परे होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकात्मकता स्थापित कर लेता है। वह अपने को पर ब्रह्मा में लीन कर लेता है। उसे परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है तथा उसे चिरंतन आनंद की अनुभूति होने लगती है। मोक्ष मानव जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य है। धर्म, अर्थ और काम इसकी प्राप्ति के पूर्व के आवश्यक पुरुषार्थ हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वे इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में सहायक सिद्ध होते हैं। मोक्ष प्राप्त होने से व्यक्ति सांसारिक बंधनों और कष्टों से मुक्त हो जाता है तथा आवागमन के चक्रों से छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक दृष्टि के अतिरिक्त समाज शास्त्रीय दृष्टि से भी मोक्ष के अनेक महत्व हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर एक, मोक्ष के माध्यम से समाज में आध्यात्मिकता के विकास की योजना प्रस्तुत की गई है। इसके द्वारा व्यक्ति को कर्मठ बनाने तथा व्यक्तिगत जीवन को सामूहिक जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। नंबर तीन, इसके द्वारा समाज को सुव्यवस्थित एवं संघर्ष रहित बनाने तथा विश्व कल्याण की भावना जागृत करने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी के अनुसार अहम के कारण यह शरीर रहता है, अहम का पूर्ण रूप से नाश ही मोक्ष है। पुरुषार्थ के महत्व। नंबर एक, आदर्श व्यक्ति का विकास। समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने पर चारों पुरुषार्थों के अपने अपने महत्व हैं। इनमें से अर्थ और काम इहलोक तथा धर्म और मोक्ष परलोक के सुखों से संबंधित है। सभी पुरुषार्थ संतुलित रूप से आदर्श व्यक्ति के विकास में सहायक है। अर्थ और काम की धर्मानुसार पूर्ति कर व्यक्ति इहलोक की आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ये पुरुषार्थ त्यागमय भोग तथा कर्तव्यमय अनुशासित जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म, अर्थ और काम से संबंधित रूप से ही परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू जीवन के अनुसार उन पुरुषार्थों के माध्यम से ही मानव जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है। नंबर दो, धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह। इनके जरिए व्यक्ति अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करता हुआ अर्थ तथा काम संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की इस प्रकार धर्मानुसार पूर्ति करता है कि समाज में व्यवस्था और समन्वय बना रहे। ये इस बात का संकेत करते हैं कि उत्तरदायित्व का समुचित ढंग से निर्वाह करने पर ही सच्ची स्वतंत्रता मिल सकती है। जो व्यक्ति इनमें से केवल एक के ही पीछे पड़ जाता है तथा अन्य की उपेक्षा करता है, उसका कार्य निंदनीय होता है। शाश्वत मूल्य अर्थ और काम को धर्म द्वारा निर्मित और नियंत्रित कर मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों का महत्व प्रदान किया गया है। धर्म, अर्थ और काम में धर्म को सर्वाधिक महत्व इसलिए प्रदान किया गया है कि व्यक्ति अर्थ और काम की पूर्ति करने से मानव जीवन के उच्च आदर्शों को भूल ना जाए। यह अवधारणा जीवन के उच्चतर आदर्शों की प्राप्ति की एक परियोजना है, जिसके अंतर्गत ना तो जीवन का व्यवहारिक पक्ष तुच्छ है और ना ही आध्यात्मिक पक्ष महत्वहीन माना गया है। श्री प्रभु के अनुसार पुरुषार्थ भारतीय सामाजिक जीवन का मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार है। इसके जरिए व्यक्ति मानसिक संतुष्टि प्राप्त कर जीवन के उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। अतः ये मनोवैज्ञानिक आधार है। ये नैतिक आधार इसलिए है कि इनके फलस्वरूप ही समाज में मानवीय गुणों और त्यागमय जीवन का विकास किया जा सका है। नंबर चार, व्यवहारिक समन्वय। इनके जरिए सांसारिक और पारलौकिक जीवन में व्यवहारिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। धर्मानुसार इनके पालन से व्यक्ति और समाज के दायित्वों में समन्वय किया गया है। पुरुषार्थों के बीच संबंध अथवा पुरुषार्थों के सापेक्षिक महत्व। यद्यपि चारों पुरुषार्थों के भिन्न भिन्न लक्ष्य तथा क्षेत्र हैं, तथापि समन्वित रूप में व्यक्ति के विकास पर बल देते हुए ये एक दूसरे से संबंध हैं। धर्म का नैतिक आचरण और सार्वभौमिक रूप वर्ण धर्मों के पालन तथा अर्थ और काम का भौतिक एवं इंद्रिय सुखों से संबंध है। तीनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं तथा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि इनमें से किसी की उपेक्षा ना की जाए। अलग अलग क्षेत्र होने के बावजूद ये परस्पर संबंध है। धर्म, अर्थ और काम पर नियंत्रण रखकर व्यक्ति को पथ भ्रष्ट होने से रोकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अर्थ और काम की धर्मानुसार पूर्ति की जानी चाहिए, ताकि जीवन के उच्च आदर्शों का उल्लंघन ना हो पाए। यदि अर्थ और काम को धर्म से पृथक कर दिया जाए तो आसुरी शक्ति जोर पकड़ सकती है, उसका और मोक्ष का तो निकट का संबंध है। धर्म आचरण के बिना चित्त शुद्ध नहीं होगा और उसके बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। जिस प्रकार अर्थ और काम पर धर्म का नियंत्रण आवश्यक है, उसी प्रकार अर्थ और काम की पूर्ति के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता है। विभिन्न यज्ञों को पूरा करने तथा धार्मिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए आर्थिक साधन आवश्यक है। दान और गृहस्थ आश्रम की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कौटिल्य ने इसे आवश्यक माना है। अर्थ का मोक्ष से भी संबंध है। धर्मानुसार संचालित आर्थिक क्रियाएं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अर्थ और काम की धर्मानुसार पूर्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। काम की पूर्ति के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता। उसके बिना संतानोत्पत्ति नहीं होगी तथा संतान के बिना ना तो पितृण से उल्ड हुआ जा सकता है और ना तो श्राद्ध तर्पण एवं पिंड दान हो सकता है। इसकी पूर्ति ना होने से मानसिक तनाव तथा निराशा की भावना पैदा होती है। ऐसी स्थिति में धर्म का पालन नहीं हो सकता है। मोक्ष मानव जीवन का अंतिम पुरुषार्थ अर्थात लक्ष्य है, जिसकी पूर्ति के लिए अन्य तीनों पुरुषार्थों की पूर्ति आवश्यक है। वे उसके साधन मात्र हैं, अतः उसकी प्राप्ति के लिए इनमें समन्वय आवश्यक है। पंच महायज्ञ। प्राचीन भारतीय पारिवारिक जीवन में परिवार के सभी सदस्य परिवार की समृद्धि तथा उन्नति हेतु प्रयत्नशील रहते थे। ये प्रत्यक्ष केवल भौतिक सुख प्राप्ति के लिए ही नहीं होते थे, अपितु उनका उद्देश्य धार्मिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक समृद्धि प्राप्त करना भी था। मनु ने इन पारिवारिक कर्तव्यों के अंतर्गत पंच महायज्ञ करने का प्रतिपादन किया है। प्रत्येक परिवार के लिए पंच महायज्ञ करने का महत्व था। ये यज्ञ परिवार की सहयोगी, सहिष्णु, नैतिकता तथा अपने पूर्वजों के प्रति आदर की प्रवृत्ति के परिचायक थे। इन यज्ञों के पीछे सबसे प्रमुख कारण था यह था कि प्रत्येक हिंदू 5 ऋणों से घिरा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण और अतिथि ऋण। इनसे उल्ड हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इसी से उल्ड होने के लिए यज्ञ किया जाता है। पंच महायज्ञों का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, ऋषि यज्ञ। यह यज्ञ ब्रह्मचर्य जीवन के उपरांत वेदा अध्ययन से विमुख ना हो जाने की आशंका के कारण किया जाता था। इस यज्ञ के अंतर्गत प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वेदों के अध्ययन द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करता था। जो व्यक्ति इस यज्ञ को नियमित रूप से करता था, उसे समाज में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। यह ऋषियों द्वारा लिए गए साधना स्वरूप ज्ञान के निमित्त होता है। नंबर 2, प्रति यज्ञ। अपने मृत पिता तथा पूर्वजों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करने तथा उनको तृप्त करने के लिए इसे करते हैं। इसमें पुत्रोत्पत्ति तथा उससे योग्य बनाना प्रमुख मानते हैं। नंबर 3, देव यज्ञ। इस यज्ञ द्वारा प्रज्वलित अग्नि में घृत, मधु तथा सुगंधित सामग्री डालकर देवताओं की प्रार्थना की जाती थी। यह आहुति विवाहित पति पत्नी द्वारा जीवन पर्यंत दी जाती थी। एक प्रकार से यह यज्ञ विवाह के समय प्रज्वलित अग्नि को निरंतर प्रदीप्त करने का प्रतीक था। पति पत्नी में से किसी की मृत्यु होने पर उसकी दाह क्रिया इसी अग्नि से की जाती थी। यह देव ऋण के लिए किया जाता है। इसमें देवताओं की हवि, पूजन आदि करते हैं। नंबर 4, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का उद्देश्य सृष्टि के अदृश्य जीवधारियों की श्रद्धा तथा उन्हें भोजन देना था। इस यज्ञ का संपादन करने वाला संसार के समस्त प्राणियों की रक्षा में तत्पर रहने वाला माना जाता था। इसमें भूतों के लिए यज्ञ किया जाता है। नंबर 5, अतिथि यज्ञ। इस यज्ञ का संपादन किया जाना इस भावना पर आधारित था कि प्रत्येक मनुष्य केवल अपने लिए ही जीवित नहीं रहता, वरन वह समस्त मानव जाति के कल्याण का आकांक्षी है। इस यज्ञ के अंतर्गत द्वार पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत, सहायता तथा सत्कार किया जाता था। पंच महायज्ञों का महत्व। पंच महायज्ञ भारतीय जीवन की अद्भुत महत्ता तथा गौरव के परिचायक हैं। इन यज्ञों द्वारा आर्यजनों ने अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन का समन्वय किया। इन यज्ञों द्वारा पारिवारिक सुख, शांति तथा समृद्धि को बनाए रखने की भावना पैदा होती थी।